नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा ओवलन से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है हमारा मुखिया कैसा हो। मध्य प्रदेश में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी चुनाव की प्रक्रिया से ही गांव की सरकार तैयार की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का विषय हमारा मुखिया कैसा हो, क्या मुखिया में क्या गुण होने चाहिए, मुखिया की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, साथ ही एक मतदाता अपने मुखिया के किस तरीके से चुनना चाहेगा, गांव के विकास में कितना कारगर साबित होता है एक मुखिया। आज हमारे साथ इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अनुप सर जुड़े हुए। अनुप सर, मोबाइल वाणी पर स्वागत सर आपका।
योगेश भाई नमस्कार।
सर, त्रिस्तरीय पंचायत राज गांव के विकास में कितना कारगर साबित हो रहा है सर?
ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, होने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर,
जी
ये जो चुनाव होता है लोकतंत्र का आधार होता है और इसी चुनाव पे मतदाता की पहचान होती है और मतदाताओं की फर्क हो जाती है। त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत अगर न हो तो गांवों का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं लोकसभा विधानसभा राज्यसभा जो बड़े बड़े चुनाव हो रहे वो आजकल गांवों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उनका जो सीधा सीधा मुंह है वो कॉरपोरेट की तरफ है। तो गांव में कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए और कितनी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, इसके लिए त्रिस्तरीय चुनाव जो है बड़ा जरूरी हो जाता है। और मतदाताओं की परख हमने कहा था, इसलिए मैं मतदाताओं की परख कहा था, यहाँ पे मतदाता अपनी बेसिक मैंने आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके मतदान करता है और भली भांति प्रत्याशी से परिचित होता है और उस आधार पर मतदान करता है। और दूसरा, इस आधार पर मतदान करता है कि उसे अपने गांव के भविष्य को तय करना होता है, वो दूर के भविष्य को नहीं तय करता है बल्कि अपने गांव के भविष्य को तय करता है, उस गांव के भविष्य को जिस मिट्टी से जुड़ा होता है, जिस संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा होता है, जहां पला और बड़ा होता है, इसलिए उसकी परख हो जाती है कि वो अपने माटी के प्रति क्या सोच रखता है, अपनी जमीन के प्रति क्या सोच रखता है, अपनी संस्कृति के प्रति क्या सोच रखता है। तो गांवों के विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मतदाताओं के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि मतदाता कितना सत्यनिष्ठ होकर के अपना मतदान कर रहा है।
सर, क्या प्रतिनिधि के लिए शिक्षा का कोई मापदंड होना चाहिए?
नहीं, देखिए, शिक्षा का मापदंड प्रतिनिधि के लिए या किसी चुनाव के लिए नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक अलग बात हो जाती है, ज्ञान एक अलग बात हो जाता है, वो समझ के लिए होता है कि आप कितना समझ रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनमें समझ नहीं होती है, वो भाषाओं को थोड़ा नहीं समझ पाते होंगे, आजकल थोड़ा भाषा और टेक्निकल थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमारा यह मानना है कि गांव को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, विधानसभाओं को चलाने के लिए बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को पढ़े लिखे होने से ज्यादा सत्यनिष्ठ होने की जरूरत है, ईमानदार होने की जरूरत है, क्योंकि आप कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं इस पे आपका विकास निर्भर करता है। पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तो थोड़ा ज्यादा समझेगा, हर बात को पढ़ लेगा, कोई उसको दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है, ज्यादा सोच सकता है। लेकिन गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी की जरूरत है, सत्यनिष्ठता की जरूरत है और उसके साथ साथ कर्तव्य की जरूरत है कि आपको जिस पद के लिए जनता ने चुनी है, मतदाता ने चुनी है, आप उसके लायक अपने कर्तव्य को कितने तरीके पूरी तरीके से पूरी कर रहे हैं, कितने त्यागी है आप उस पद के लायक। तो अगर वो व्यक्ति त्यागी है, सत्यनिष्ठ है, नैतिक है, तो हमें नहीं लग रहा है कि बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है।
क्या सर, कोई प्रतिनिधि को चुनने के लिए जो निर्वाचन आयोग की जो आरक्षण प्रणाली में, क्या सभी प्रतिनिधियों को क्या यानी प्रति सबको प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व तो करने का मौका मिल रहा है सर, या आरक्षण प्रणाली के माध्यम से?
नहीं, देखिए, ये एक दूसरी बात हो जाती है, वो परिसीमन जो तय होता है चुनाव आयोग तय करता है और जिला का जो चुनाव आयोग होता है त्रिस्तरीय पंचायत में वो तय करता है। और इस बात को ध्यान में रखते होंगे कि किस आधार पर तय किया जाए कि सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाए, सारे वर्गों को समान अवसर मिल जाए, ये तो उनकी प्रथम प्राथमिकता बन जाती है, कोई इसको ध्यान में रख करके तय करे। अब हो क्या रहा है योगेश भाई, आप देखेंगे कि आजकल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह सरकार से नियंत्रित हो रही है और चुनाव आयोग भी जो है एक तरीके से वह दलों के पक्ष में हो गया है, दलीय होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहले निष्पक्षता होती थी चुनाव आयोग का या जिला प्रशासन का, वह प्रभावित हुआ है। यह जो प्रभाव है ये थोड़ा सा असर डाल रहा है, लेकिन फिर भी अपने को सकारात्मक रखना चाहिए, अपने को सकारात्मक ये सोचना चाहिए कि नहीं, चुनाव आयोग जो परिसीमन करेगा वो अच्छा करेगा, जो जिला प्रशासन निर्णय लेगा वो अच्छा लेगा। हाँ, हमें वाच करना है कि वो कहीं गड़बड़ न करे, और गड़बड़ करे तो मतदाता की प्रथम भूमिका है कि उठाए कि भाई आपने हमारे यहाँ प्रशासन में ये परिसीमन में गलती की है, परिसीमन को सुधारे, और उसके लिए बहुत सारी अपीलें हैं, उस पर अपील की जा सकती है। तो चुनाव आयोग थोड़ा सा आजकल निष्पक्ष नहीं रह गया है, फिर भी हमें सकारात्मक होकर के उसके भावनाओं को लेना है, और जहां भी गलती लगे हमें वहां बोलने की जरूरत है।
सर, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ऐसा कई मामला सामने आए हैं
जी,
और इसे सुप्रीम कोर्ट में गए भी हैं, परंतु अब तक इसका कोई निदान नहीं निकल पाया है, क्योंकि एक गांव का प्रतिनिधि को एक निश्चित वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के बाद में उस वर्ग का लोग वर्ग के लोग अगर उसी गांव में निवास नहीं करते हैं, तो इस तरह की समस्या आ रही है लोगों को।
बिल्कुल,
इस ऐसी परिस्थिति में सर क्या करना चाहिए, इनके ये क्या एक कोई प्रक्रिया है?
नहीं, ये तो भाई चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की गलती है कि भाई अब किस आधार पे तय कर दिए, जिस गांव में आप परिसीमन लागू कर रहे हो उस जाति के लोग उस गांव में ही नहीं, उस वर्ग के लोग वहां पे ही नहीं, तो आप किस दिशा से प्रभावित होकर के या कौन से प्रभाव में प्रभावित होकर के आप इस तरीके का निर्धारण कर रहे हैं। अभी कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे मध्य प्रदेश के, तो हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में इंटरफेयर करना हमारा अधिकार नहीं है, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। भाई अब हाईकोर्ट जब यह निर्णय देगा, सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे बोलने लगेगा, तो जनता अपनी गुहार कहाँ लगाएगी? हाईकोर्ट को तो चाहिए कि तत्काल एक बेंच बना करके इसकी निर्णय ले और देखे कि भाई कहाँ कहाँ गलत हुआ है। तब हाईकोर्ट क्या कर रहा है कि अब आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, और अगर नहीं भी कहेगा तो लोग उच्च न्यायालय में आते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, लेकिन अब समय कहाँ रह गया कि सर्वोच्च न्यायालय में जाए। और दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय में एक ही बार जाने पे तो हल नहीं हो जाता मामला, वो लंबी प्रक्रिया है और तारीख पे तारीख मिलने लगती है। तो भाई जो पार्टी जा रही है, अगर कमजोर पार्टी जाएगी तो कहां से बियर कर पाएगी खर्चा? यह तो गलत है, वो तो उच्च न्यायालय को अपने संज्ञान में लेकर के इसको हल करना चाहिए कि नहीं, आप जिला प्रशासन के लोग गलत किए हैं, चुनाव आयोग को तलब करना चाहिए भाई आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो आज आप देखिए योगेश भाई कि आज देश भर की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका भी है उसमें, यह भी कहीं ना कहीं सत्ता से प्रभावित हो रही है, और सत्ता से जितने प्रभावित होंगी या जितने संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण होगा या सत्ताकरण होगा, उसका बुरा असर जनता पे पड़ेगा। तो इसका असर दिखाई दे रहा है कि अपने मन से तो परिसीमन कर रहे हैं या कर दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह तो गलत है, सरासर गलत है। तो जनता को कुछ ठोस उपाय लगाना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए, लेकिन अभी तो समय चल रहा है, ये चुनाव नजदीक आ गया है और न्यायालय भी जवाब दे चुका है। यह तो गलती चुनाव आयोग की है और जिला प्रशासन की है, जिला प्रशासन इतनी नैतिक होती तो इसमें सुधार करती और इसको टाला जा सकता था थोड़े दिन के लिए, और उस पर सीमा सही करके लाया जा सकता था। लेकिन जो सत्ता से प्रभावित हो जाते हैं वो दिमागी रूप से अंधे हो जाते हैं, दिमागी रूप से विकलांग हो जाते हैं। तो जब लोग दिमागी रूप से विकलांग हो जाते हैं तो उस पर कोई चारा नहीं चलता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जनता मतदान के माध्यम से बूझ दबाए, जनता मतदान के माध्यम से जवाब दे, ताकि यह बदलाव का सबसे बड़ा साधन है।
सर, आप भी एक मतदाता हो, सर आप किस तरीके का मुखिया चुनना चाहोगे?
हम तो ऐसा मुखिया चुनना चाहेंगे जो ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ हो, जो यह समझता हो कि गांव के लोगों ने हमें वोट दिया है तो किस लिए दिया है, गांव के विकास के लिए दिया हो, वो स्वयं का विकास करने वाला ना हो, गांव के विकास करने वाला हो, क्षेत्र का विकास करने वाला हो, जो परिवारवाद से ऊपर उठ करके सोचता हो, जो जाति से ऊपर उठ करके सोचता हो, जो धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ के सोचता हो, और जिसके चुनाव के वचन पत्र में जनता की सवाल हो, जो अपने कर्तव्य में जनता को रखता हो, मूल में जनता के सवालों को रखता है, जनता के जनभावनाओं को रखता है, हम चाहेंगे कोई ऐसा व्यक्ति मुखिया बने और वही व्यक्ति ईमानदार हो और ईमानदारी से काम करे, हमारा तो मुखिया ऐसा होगा।
क्या सर, एक मुखिया को चुनते समय मुखिया में क्या गुण होने चाहिए ताकि मतदाता उन गुणों को देखकर प्रतिनिधि को चुन सके, ऐसे क्या गुण होने चाहिए एक मतदाता को, मतदाता उनके विशेषता?
देखिए, आज बहुत बड़ा बदलाव आया है चुनाव लड़ने वालों में भी और चुनाव लड़ाने वालों में भी और मतदाता में भी। आज तीनों जो पक्ष है वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है, 90% आप देख लीजिए। कुछ लोग चुनाव के समय नेता पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग चुनाव के 6 महीना पहले नेता पैदा हो जाते हैं, और कुछ जो नेता लगातार काम करते हैं, वास्तव में जो समाज के लिए काम करते हैं, वो भी लड़ते हैं। लेकिन ये जो पहले दो वर्ग के नेता पैदा हो रहे हैं, जो चुनाव के समय और चुनाव के 6 महीने पहले, उनसे बड़ा डर लगता है और ये तलाश करते हैं अवसर का, इनको अपॉर्चुनिस्ट कहा जाए, अवसरवादी कहा जाए। तो मतदाता को ये देखना है कि भाई अवसरवादी कहीं चुन करके ना आ जाए, क्योंकि अंतिम वैक्सीन तो मतदाता ही लगाता है जब मत देने जाता है। तो उसको ऐसा वैक्सीन लगाना है कि अवसरवादी व्यक्ति चुन करके ना आए, ऐसा व्यक्ति चुन करके आए जो लगातार 5 साल हमारे लिए काम करता हो, वो हाथ जीत से प्रभावित न होता हो। आज क्या देखा जा रहा है कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है, अरे भाई वो क्यों जीत रहा है? अगर कर्तव्य करने के आधार पर जीत रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे खर्चा कर करके, मदिरा का प्रयोग कर करके, खाने पीने की व्यवस्था करके चुनाव जीत रहा है, अगर वो चुनाव गांव के चुनाव में अगर 20 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्चा कर रहा है तो वो तो वसूली करेगा। चुनाव पैसे का खेल तो होता नहीं है, लेकिन आजकल राजनीति और चुनाव को पैसे का जो खेल बना दिया गया है तो वो इसमें व्यवसायी आ रहे हैं और नाना प्रकार के माफिया आ जा रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको पद के द्वारा एक संरक्षण मिल जाता है और दूसरा ये जो 5 साल का व्यवस्था होता है चुनाव का, वो तेल उसे कमाने का कुआं समझ लिए है, तो जितना चाहे उतना निकाल लेते हैं। तो अंतिम दवाई तो मतदाता को ही करना है, तो मतदाता को देखना चाहिए कि हम अवसरवादी को न चुने, एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो गांव के प्रति सत्यनिष्ठ हो, जो गांव के प्रति काम करना चाहता है। दूसरी बात, जो लोग चुनाव लड़ रहे, आज हम बहुत सारे लोगों को देख रहे कि पहले वो 4 साल 5 साल काम किए दूसरे मुद्दे पे और अभी चुनाव आया तो क्षेत्रीय कुछ मुद्दों को उठाने लगे। भैया आप 4 साल कहाँ थे? 4.5 साल आप उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे थे? उस मुद्दे को क्यों बदल रहे थे आप? और अभी जब चुनाव आ गया तो आप बोल रहे कि नहीं नहीं ये मुद्दा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, जो मुद्दा बदलने में भी अवसर देखते हैं, ऐसे लोगों को भी मतदाता को पहचान करना चाहिए।
सर क्या एक मुखिया के तौर पर सरकार की योजनाओं को गांव के विकास में सर कितना महत्वपूर्ण दे पा रहे हैं वर्तमान में?
आज जो मुखिया चुने जा रहे हैं, सभी तो नहीं, लेकिन आप देखिए कि अधिकांश तो जो मुखिया हो रहे हैं वो योजनाओं का लाभ गांव के तरफ नहीं ले जा रहे, अपने चंद लोगों के तरफ लेकर के जा रहे। वो देख रहे हैं कि इनसे हमारा फायदा क्या है, इनसे हमारा मुनाफा क्या है, और जहां से मुनाफा हो रहा है वहां सरकार की योजनाओं को ले जा रहे हैं, उन लोगों को दे रहे, अपने लोगों को दे रहे। अगर व्यक्ति 5 साल हिसाब से काम कर दे, ईमानदारी से काम कर दे, तो जो सरकार की योजनाएं आ रही 5 साल में गांव का अधिकांश समस्या हल हो जाएगी, अधिक से अधिक समस्या हल हो जाएगी। लेकिन भाई हर 5 साल में समस्या कुछ ना कुछ नया बनती रहती है, तो नई समस्याओं को हल किया जाए और ऐसा ना किया जाए कि समस्या लगातार बनती रहे, कुछ जो जड़वत समस्या है उनको हल किया जाए। गाँव में कौन सी समस्या है? गाँव में जो मेन समस्या है नाली वगैरह की समस्या है, खाद्यान्न व्यवस्था की समस्या है, पानी की समस्या है। आज तो सबसे मेन समस्या पानी की है कि लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, अच्छा सड़क मिल जाए लोगों को, अच्छी व्यवस्था मिल जाए। वो गांव में जाए अगर कहीं राशन लेने तो वहां लाइन न लगाना पड़े, तुरंत राशन उनको मिल जाए, समय की बचत हो जाए। तो आज देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो करप्शन हो रहा है वो राशन की दुकानों पर हो रहा है। राशन की दुकान पर करप्शन इसलिए कि जो कोटेदार है वो कमाने के चक्कर में लगे, और कमा क्यों रहा है भैया? क्योंकि वो गाँव के सरपंच से, गाँव के मुखिया से मिला है। अगर गाँव का मुखिया ईमानदार हो जाता तो कोटेदार लूटता नहीं। इसलिए मतदाता को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को चुन करके दे जो सरकार की योजनाओं को हम लोगों के लिए करे, अपने लोगों के लिए न करे, और कोटेदार को लूटने वाला न हो, कोटेदार को लूटने की छूट न दे।
तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 23वीं पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद में एक मुखिया को किस तरह चुना जाए, गाँव के विकास में एक मुखिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, साथ ही पंचायत राज।
मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ योगेश भाई, समझ देंगे कि आप, एक सेकेंड।
जी सर बोलिए।
देखिए अभी तक तो अपनी बात चल रही थी मुखिया पे मुखिया कैसा होना चाहिए
जी,
लेकिन अब सवाल ये होना चाहिए, हमारा कहना है कि मतदाता कैसा हो, क्योंकि मतदाता ही सबसे बड़ा शक्तिशाली है। मतदाता भी ईमानदार हो, मतदाता भी सत्यनिष्ठ हो, मतदाता भी नैतिक बने, वह सरकार के खैरात पे या मुखिया के खैरात पे जीने वाला ना हो, वो यह ना सोचे कि हमको 5 किलो राशन मिल जाए, हमको नमक मिल जाए, तेल मिल जाए, घी मिल जाए, वो यह सोचे कि जिसको हम चुन करके दे रहे वह व्यक्ति गांव के विकास करने वाला हो। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत की बात है कि मतदाता अपनी भूमिका में परिवर्तन लाए और मतदाता सत्यनिष्ठ बने। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई।
जी सर, अनूप सर आपने मोबाइल वाणी पर जिस तरह समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
योगेश। आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद सर।
नमस्कार।
नमस्कार।